आगे हम एक और खूबसूरत सूरत शुरू करते हैं और उसका नाम है सूरत हूद। अंबिया कराम के नामों से शुरू होने वाली दूसरी सूरत है और इस सूरत के बारे में अल्लाह के नबी की एक हदीस आती है कि सहाबा ने आपके सर में कुछ सफ़ेद बाल देखे तो आपने पूछा कि अल्लाह के नबी बुढ़ापे के आसार, तो आपने फरमाया कि शई बतनी हूदन व खवातुहा, मुझे सूरत हूद और इसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया। क्या गम था, क्या बेटियां थी जिनकी शादी उनके गम ने बुरा किया, या बेटों के मुस्तकबिल ने? नहीं, इस सोच के साथ इस सूरत को पढ़ते हैं कि हम भी ढूंढें कि इसमें क्या है। एंड पे बताऊंगी आपको कि वो बात क्या थी। तरतीब के एतबार से 11 नंबर की सूरत है और हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 5 आयतें इस पारा 11 में है और अगली आयतें फिर इंशाल्लाह 12 पारे के साथ होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहू। टॉपिक है अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की ये रिवायत मौजूद है। आपने फरमाया कि खूद अल वाक़िया और मुरसलात और अम्मा यतसालून और इज़ शम्स कुवरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 3297 और इसी तरह ये रिवायत मुख्तलिफ रिवायतों में मौजूद है। हम ढूंढते हैं कि आखिर इसमें भला बालों के सफ़ेद होने की क्या बात है। अलिफ लाम रा, ये कैसी किताब है कि इसकी आयतें मुहकम की गई हैं फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम बाखबर की तरफ से। और ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी की इबादत ना करो, यानी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। मैं तुमको अल्लाह ताला की तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ। और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने तरफ से माफ कराओ फिर इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान्य जिंदगी देगा और हर ज्यादा अमल करने वाले को ज्यादा सवाब देगा। और अगर तुम लोग झुटलाते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और वो हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। याद रखो, वो लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सकें। याद रखो कि वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं वो इस वक्त भी सब जानता है जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। बिल यकीन वो दिलों के अंदर की बातें जानता है। क्या पता चला कि सूरत के बिल्कुल शुरू में कुरान की दावत की बात है, इस्तग़फार की बात है और उनके ना मानने की बात है। मक्का वाले तकब्बुर से भरे हुए थे, नबी की दावत पे अपने कपड़े लपेट कर उठकर चले जाते क्योंकि हिदायत की भूख नहीं थी। आप देखिए कि किसी के सामने खाना पेश किया जाए और वो खाने को कबूल कर ले, क्या मतलब है कि भूख है, तलब है, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जिस्मानी नशो नुमा चाहता है। इसके बरक्स अगर ना कोई खाना कबूल करे बल्कि बुरा मनाए, गुस्सा करे, तो मान लीजिए कि एक तो भूख नहीं है, दूसरी बात है अपने जिस्म को वो परवरिश देना नहीं चाहता। बस यही मामला इस दावत हक है। जब इंसान हक को कबूल करता है ना तो वो रिस्क रब्बानी को कबूल करता है। पीछे आपको लिखा चुकी हूँ, दौरे कुरान का पहला दिन इंट्रो में लिखाया था कि कुरान एक दस्तरखान है जहाँ हम रब्बानी रिस्क खाते हैं। आपने माशाल्लाह 12 बारों तक कबूल किया, आपके अंदर जाएगा, आपकी रूह और आपके जिस्म दोनों की इसलाह करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर रूहानी तरक्की देकर जन्नत की तरफ ले जाएगा जो कि हकीकत में आपकी मेरी मंजिल है। और अगर हम इसको छोड़ दें, हम थक गए, अब और नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह ने 12वें पारे से पहले 11वें कैंट पे बता दिया कि कुरैश के वो बड़े सरदार जो तकब्बुर के मारे या बेनियाजी के साथ इस दावत को पीछे कर गए, असल में उसने नबी को भी हकीर जाना और कुरान को भी हकीर जाना और इनको ये बात भूल गई कि नबी और कुरान अल्लाह के भेजे हुए थे। तो लिखिए, जो दावत देने वाले को नज़रअंदाज करे गोया कि वो अल्लाह को नज़रअंदाज करता है, जो इस कुरान को छोड़े गोया कि वो अल्लाह को छोड़ रहा है। फिर ऐसे लोगों का क़यामत के दिन क्या हाल होगा जब अल्लाह ताला का सामना करेंगे। जिसको आप नज़रअंदाज करें वो एकदम आपके सामने आ जाए तो कैसा लगता है। रूठे हुए लोग, नाराज लोग एक दूसरे के सामने आते हैं तो नजरें नहीं मिलाते। ऐसे लोग चाहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला से नज़रें ना मिलाएं? वो हस्ती जिसने सब कुछ दिया, जिसकी बनाई हुई दुनिया में रहे और मस्तियाँ की, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी इस्लाह की फ़िक्र लगा दे। यहाँ पे 11वां पारा पूरा होता है। अमल के नुक्ते नोट करते हैं। रज़ा इलाही को पाने वाले, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, रब की तरफ पलटना है, उससे माफ़ी मांगनी है और हक की दावत से मुंह नहीं फेरना। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे कि हम अमल करने वाले बने। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ से 12वां पारा शुरू हो रहा है। हम सूरह वाइज चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि आगे अंदाज थोड़ा सा बदल रहा है। तो वमा मिन दाबा, चंद बातें पारे की और पारे में से भी सूरत खुद की, क्योंकि यहाँ हर सूरत एक डिफरेंट मिजाज की आपको दिखती रहेगी। तो 12वें पारे के आगाज़ यानी सूरत हूद का मौजू सहाबे कराम और कस्बे हलाल। इस पारे में आपको रिस्क की बात बहुत मिलेगी। अल्लाह ने आपको मुझे भी रिस्क दिया, इस रिस्क को पाकर हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज़ हम सब ने अपने बारे में देखनी है। लेकिन सहाबे कराम का रिस्क हलाल के साथ क्या ताल्लुक था? और आयत नंबर 6 जो सूरत हूद की आ रही है, आइए उसको पढ़ते हैं और फिर इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। और इसी बारे में आप आगे जाकर हराम बिन मिलहान के बारे में जानेंगे कि ये क्या शख्सियत है, और इस बारे की जो दुआ है ये भी आपको उन्हीं के हालात के साथ जाकर आगे बताऊंगी। और यहाँ आप देखेंगे कि सहाबा का वो रूप दिखेगा आपको इंशाल्लाह, कि जो हकीकत में ज़मीन और आसमान दोनों में किसी को ना मिला। एक जुमला लिखिए, मुझको ज़्यादा कीमत मिल रही है। ये जुमला एक सहाबी ने बोला था। कब बोला था? जब उनको उनके माल की बहुत सारी कीमत पेश की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं देना तुम्हें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कीमत मिल रही है। वाक़िया इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है। आप सिर्फ इसको अपने अमल के लिए लीजिए। कहते हैं कि हज़रत अबू बकर का दौर था और कहत पड़ गया, लोग परेशान हो गए। अबू बकर ने फरमाया, तुम घबराओ नहीं, अल्लाह जल्द ही तुम्हारे लिए कुशादगी की सूरत पैदा करेगा। अमल का नुक्ता नोट कीजिए कि अच्छे लीडर्स हौसले बढ़ाते हैं, तोड़ते नहीं, कि महंगाई बहुत हो गई, पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि उस्माने गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का तिजारती काफिला शाम से आया और इसमें 1,000 ऊँट थे और सब के सब गेहूं और खाने की चीज़ों से लदे हुए थे। और नोट कीजिएगा कि अरब में गेहूं बड़ी कीमती चीज़ थी। कोई मेहमान आता था ना, फिर आटा गूंथते थे, खजूरें खाते थे बस, या फिर जो लोकल चीज़ें जौ खा लेते थे, बारले आटा बड़ा कीमती होता था। तो आप कह लें इम्पोर्टेड गुड्स, आपके चंद स्टोरों के नाम ले दो जहाँ से आपको इम्पोर्टेड खाना मिलता है, वो आ चुका है। ये खबर मदीना में फैल गई तो शहर के जो ताजिर थे ना, ट्रेडर्स, वो उस्माने गनी के घर पहुंच गए। दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, बाहर आइए, बाहर आइए। कहते हैं कि हज़रत उस्मान जब बाहर आए तो उनके पास एक चादर थी जिसको अपने कंधे पे इस तरह डाले हुए थे कि इसका एक सिरा सामने लटक रहा था, दूसरा पीछे, यानी जैसे आप एक शोल्डर पे दुपट्टा डालकर आधा पीछे कर दें। उस्मान ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? ताजिरों ने कहा, हमें ये पता चला है कि आपके पास 1,000 ऊँट गेहूँ और गजाई सामान से लदे हुए हैं, हम उनको ख़रीदना चाहते हैं। आज की ज़बान में पता क्या है कि होल सेलर का कंटेनर है और परचून वाले ख़रीद रहे हैं कि इनसे ले के जाके महंगे हाथों बेचते हैं। कहने लगे, हमारे हाथ ये गजाई सामान बेच दें ताकि हम इसको मदीना के ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दें। उस्मान ने कहा कि अंदर आओ और घर में बैठ कर बात करो। वो अंदर आए तो देखा कि 1,000 ढेर पड़े हुए हैं घर के अंदर और बहुत सामान है। बातचीत शुरू हुई। उस्मान ने कहा, मेरी शाम की ख़रीदारी पर तुम मुझको कितना ज़्यादा नफ़ा दोगे, यानी वहाँ से इतने का आया है, अब तुम प्रॉफिट का मार्जिन क्या देते हो? उन्होंने कहा, 10 दिरहम पर 12 दिरहम, यानी जो आपको चीज़ वहाँ से 10 की मिली है ना, हम आपसे वो 12 की ख़रीद लेंगे। उस्मान ने कहा, नहीं, मुझको तो इससे भी ज़्यादा कीमत मिल रही है। उन्होंने कहा, अच्छा चले 10 वाली चीज़ 14 की ले लेते हैं, 10 पे 4 मतलब एक्स्ट्रा। उस्मान ने कहा मुझे इससे भी ज्यादा है। उन्होंने कहा अच्छा फिर हम आपको 15 दिरहम देते हैं। उस्मान ने कहा मुझे इससे भी ज्यादा मिल रही है। अब वो सारा सटपट आ गए, कहने के कौन है जो आपको इससे ज्यादा दे रहा है, जबकि मदीना के जितने ताजिर हैं सब यहाँ जमा है, यानी इनाम दीजिए, ऐसे ही तो नहीं अब कहीं जा रहे हैं। उस पे उस्मान ने कहा मुझको हर एक दिरहम के बदले 10 दिरहम मिल रहे हैं, फिर क्या तुम मुझे इससे ज्यादा दे सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। उस्मान ने कहा अल्लाह ने अपनी किताब में ये फरमाया है जो शख्स नेकी लेकर आएगा अशरुम जालिहा उसके लिए उसका 10 गुना बदला है। आप सूरत अल अनाम की आयत 160 में ये बात पढ़ के आए हैं। तो मदीना के ताजिरों गवाह रहो, मैंने ये तमाम गजाई सामान अल्लाह के लिए शहर के जरूरतमंदों पर सदका कर दिया। अल्लाह के वादों पर यकीन इंसान के हौसले को इतना बुलंद कर देता है कि बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहती। इस वाक़े को सामने रखते हुए आयतों को सुनिएगा। रिस्क की बहुत सारी बातें हैं इस सूरत में। शुरू करते हैं 6 से 123 तक ये सूरत है इस बारे में, और तरतीब में 11 नंबर की सूरत है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها پہلی دو آیتیں 6 to 8। پہلا رکوع اللہ ہر جاندار کے بارے میں علم رکھتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور وہ ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ अल्लाह ही है वो जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे ये तो निरा साफ साफ जादू है। और अगर हम इनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक इनके पीछे डाल दें तो ये जरूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज रोके हुए है। सुनो जिस दिन वो इनके पास आएगा फिर इनसे टलने वाला नहीं, फिर तो जिसकी हंसी उड़ा रहे थे वो इन्हें घेर लेगी। क्या पता चला वमा मिंदा बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिस्क इतना बड़ा गम ना बनाइए कि नमाजें जाने लगे, जुमे की नमाज चली जाए, दुकान बंद नहीं कर रहे। साहबे कराम और कस्बे हलाल, हकीकत है कि बेहतरीन तिजारत पेशा साहबे कराम थे, लेकिन उन्होंने मकसद हयात माल कमाने को नहीं बनाया, मसरत के साथ जो आज हमारे अक्सर भाइयों का बन चुका है। ना बच्चों की तरबियत की फिक्र, ना नमाज रोजे की परवाह, कमाते जाओ और खिलाते जाओ। साहबियात की मिसालें हैं, काम भी करती थी और अमल साले भी थे। इसी तरह साहबे कराम तवक्कुल अल्लाह की एक मिसाल थे और आखरत की फिक्र करने वाले थे। अगर आप इस मौजू पे थोड़ी सी भी बात करें तो आपको इस बात का यकीन आ जाता है कि रिस्क की आप जितनी फिक्र करेंगे उतना रिस्क कम होगा और जितना आप इससे बेनियाज हो जाएंगे उतना ही बढ़ेगा। अल्लाह का नाम रज़्ज़ाक आपको मुझे इस बात का यकीन दिलाता है। आप देखिए कि आयत नंबर 6 में वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी अलल्लाह ही रिज़्क़ुहा, क्या पता चला कि रिस्क अल्लाह के जिम्मे। माँ के पेट में खिलाता था ना, माँ की गोद में आने के बाद पिलाया, चलिए पैदा होकर चलने फिरने की उम्र तक खिलाया ना, बंदा या अल्लाह नहीं कह सकता था, या रब्बी नहीं कह सकता था, या रज़्ज़ाक और रुज़ुक़नी नहीं कह सकता था, और उसने खिलाया ना, और अब क्या हो गया, अब तो ताकत वाले हो। और आप देखिए कि आयत 7 में मकसद हयात लिया ब्लुवाकुम अय्युकुम अहसनु अमला। साहबा का अमल क्या था कि उन्होंने ये बात समझ ली थी। नंबर एक लिखिए अल्लाह ही कायनात के तमाम खजानों का मालिक है, सिर्फ अल्लाह ताला ही कायनात की हर चीज़ का रासिक है। रिस्क में वुसअत और तंगी का ताल्लुक मशीयत इलाही से है, और रिस्क के असूल के लिए जिद्दोजहद करनी है, अजर है, जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है, लेकिन इसको मकसद हयात नहीं बनाना। وسلم نے رزق کے حصول کے لیے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا بھی سکھایا ہے. غیر ضروری اور غیر مناسب جد و جہد رزق کے تلاش کرنے کی بجائے احسن و عمل کی طرف ہو. اس میں ایک بک پڑھائی تھی میں نے خود بھی اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی, رزق کی کنجیاں, اٹلانٹا سے پڑھی تھی ہم نے کچھ سال پہلے, مل جائے گی آپ کو کہیں نہ کہیں یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر. اس میں سے چند پوائنٹس صرف آپ کے اپنے فائدے, اور آپ آج کا یہ سبق اپنے مردوں سے شیئر کیجئے گا, یہ چھوٹا سا پارٹی سے ہی جا کے ان کو بتائیے. رزق میں اضافے کے اسباب, کیسے رزق بڑھتا ہے. نمبر ایک, استغفار. سورت خود کا مین تھیم استغفار ہے ساتھ ساتھ. پھر تقوی, اوامر و نواہی کی پابندی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, توکل علی اللہ, اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے فارغ ہونا, صلہ رحمی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, شرعی علوم کے حصول کے لیے وقف ہونے والوں پر خرچ کرنا, کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا, ہجرت اور حج اور عمرے میں متابعت. آج ہم صحابہ کا وہ روپ دیکھیں گے جو بہت ساروں نے نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کہ صحابہ میں زیادہ تر کا دار و مدار تجارت پر تھا, مگر صحابہ زراعت کے ساتھ صنعت و حرفت میں بھی دلچسپی رکھتے تھے. کتب احادیث کو دیکھیے, ابو بکر صدیق, طلحہ, سویت بن قیس کپڑا بیچتے تھے, کپڑے کا کام کرتے تھے, بزداری بولتے ہیں نا اس کو, بزاز تھے. حضرت عثمان غنی بھی کپڑے اور کھجوروں کی تجارت کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف روغنیات یعنی تیل بیچتے تھے اور کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے. حضرت عمر زراعت کا کام کرتے تھے, کھیتوں میں کام جیسے ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے, جیسے گروسری کہہ لیں آج آپ. حضرت خباب لوہار کا کام کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم اور برا بن عازب سنار یعنی صراف تھے. زبیر بن عوام اور عثمان بن طلحہ درزی تھے. حاتب بن ابی بلتا یا خاطب بن ابی طباخی کھانے پکانے کا کام کرتے تھے. مدینہ پاک طیبہ میں ان کا ہوٹل تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص تیر ساز تھے. حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے اور ابن مسعود اور حضرت علی یہ کاشتکاری کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی چٹائیاں بناتے تھے, جبکہ بعض صحابہ کرام چمڑا سازی یعنی لیدر کا ورک کہہ لیجئے, اور حمال, حمل کہتے بوجھ اٹھانے کو, ٹرانسپورٹرز. اور عبداللہ بن مسعود بکریاں چراتے تھے, اور بلال بن ربہ گھریلو ملازم تھے. آپ کا کیا خیال ہے, صرف جنگی لڑی ہیں انہوں نے؟ آج یہ موضوع میں آپ کو جان کے دے رہی ہوں کہ یہ نہ لگے کہ بس اللہ کی رضا پانے کے لیے آپ کو تلواریں تیر پکڑنے یا قلم پکڑنے. بی پریکٹیکل. چلے, مرد تو مرتے, عورتیں ازواج مطہرات گھروں میں کام کرتی تھی, خود اپنے کام, اون کاٹتی, کھالوں کی دباغت کرتی یعنی ٹریننگ کرتی تھی, جو کھالے ہیں نا اس کو رنگتی تھی. حضرت زینب بھی یہ کرتی تھی. حضرت اسمہ بنت ابی بکر جانوروں کی خدمت اور جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی. کچھ صحابیت کھانا پکا کر فروخت کرنے کا کام کرتی تھی. کچھ دایا تھی یعنی نرسیں تھیں. کچھ زراعت کا کام کرتی اور کچھ تجارت کرتی, اور کچھ خوشبوئیں فروخت کرتی, کچھ کپڑا بنتی, کچھ بڑھائی کا کام کرتی. یہ بخاری کی روایت ہے. اور عورتیں دیکھیے جتنے کام کرتی تھیں موسٹلی گھر سے کرتی تھیں, مردوں کے شانہ بشانہ آفیسز میں نہیں بیٹھتی تھی. تو یہ سارا کچھ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے. انہی میں سے آج ایک صحابی حرام بن ملحان ہمارے اس پارے کی شخصیت ہیں, جس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے اسی پارے میں ایک خاص مقام پہ سنیں گے. اپنے لیے عمل کے رویے لے لیجئے ان آیات کو پڑھنے کے بعد. اچھے عمل کرنا ہے, اللہ رزاق ہے اس پر ایمان رکھیے, اللہ العلیم ہے اس پر ایمان رکھیے, مذاق نہیں اڑانا, کفر نہیں کرنا, زندگی کے امتحانوں میں بھی اچھے کام کرنے ہیں, اللہ اس کی توفیق دے دے. آگے ہے رکوع نمبر 2 آیت 9 سے 24. روشن دلیل پر قائم رہنا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لے تو بہت نا امید اور بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے. آج کی زبان میں کیا ہوتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. और अगर हम इसे कोई मजा चखाएं इस सख्ती के बाद जो इसे पहुंच चुकी थी, तो वो कहने लगता है, बस बुराइयां मुझसे जाती रहीं। यकीनन वो बड़ा इतराने वाला शेखी खोर है, सिवाय इनके जो सब्र करते हैं और नेक कामों में लगे रहते हैं। इन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा बदला है। अल्लाह मुझे आपको इनमें शामिल कर दे। बस शायद कि आप इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है, और इससे आपका दिल तंग हो रहा है। सिर्फ इस बात पर कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा, या इसके साथ कोई फरिश्ता नहीं उतरा। सुन लीजिए, आप तो सिर्फ डराने वाले ही हैं, और हर चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ अल्लाह ताला है। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को इसी ने घड़ा है? जवाब दीजिए कि फिर तुम भी इसी के मिसल 10 सूरतें घड़ी भी ले आओ। ये अब तीसरी दफ़ा चैलेंज आ रहा है, 2 चैलेंज पीछे गुजर चुके हैं। और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपने साथ बुला भी लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो तुम्हारी इस बात को कबूल ना करें, तो तुम यकीन से जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म के साथ उतारा गया है, और ये कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं। बस क्या तुम मुसलमान होते हो? क्या जवाब है आपका मेरा? जी हम मुसलमान होते हैं, नहनु मुस्लिमून। अब दुनिया और आखिरत का तकाबल, जो शख्स दुनिया की जिंदगी और इसकी जीनत पर फरेफ्ता हुआ जाता है, यानी मर मिटता है, जान निकलती है दुनिया की चीज़ों को देखकर, हम ऐसों को इनके कुल अमाल का बदला यहीं भरपूर पहुंचा देते हैं, और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं दी जाती। अब यहाँ देखिए रिस्क की बातें हैं, हम दुनिया की ये स्टैंडर्ड और कैट रैट रेस और पता नहीं कौन कौन सी रेस में अपनी सारी नमाजें भी ज़ाया कर दें, और हमें फिक्र ही ना हो किसी और चीज़ की, सिर्फ कमाना या सजाना। मर्द कमाते रहे, औरतें खर्च करती रहे। बाजारों में देखिए जरा, औरतें कैसे बावलों की तरह फिरती, एक एक जोड़े पे हजारों देके आ जाती हैं। अल्लाह कहते हैं, तुम इतना क्यों एंजाइटी का शिकार हो? अगर सिर्फ दुनिया चाहिए तो सुन लो, हाँ यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिवाय आग के और कुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब इकारत है, और जो कुछ अमाल थे सब बर्बाद होने वाले हैं। क्या वो शख्स जो अपने रब के पास की दलील पर हो और इसके साथ रब की तरफ का गवाह हो, मुराद हजरत जिब्राइल है, और इससे पहले मूसा की किताब गवाह हो जो पेशवा और रहमत है, औरों के बराबर हो सकता है? क्या जवाब है? नहीं हो सकता। यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और तमाम फिरकों में से भी जो इसका मुनकर हो, इसके आखिरी वादे की जगह जहन्नुम है। बस तो आप इसमें किसी किस्म के शक में न रहिए, यकीनन ये आपके रब की जानिब से सरासर बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे, और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बांधा। खबरदार हो कि अल्लाह की लानत है जालिमों पर। कौन? जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कजी तलाश कर लेते हैं, यही आखरत के मुनकर हैं। ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके, ना इनका कोई हिमायती अल्लाह के सिवा हुआ। इनके लिए अजाब दुगना किया जाएगा। ना ये सुनने की ताकत रखते थे और ना देखते ही थे। यही है जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया, और वो सब कुछ इनसे खो गया जो उन्होंने घर रखा था। बेशक ये लोग आखरत में नुकसान उठाने वाले होंगे, लेकिन सब ऐसे नहीं। यकीनन जो लोग ईमान लाए, उन्होंने काम भी नहीं किए और अपने पालने वाले की तरफ झुकते भी रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं जहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों फिरकों की मिसाल अंधे बहरे और देखने और सुनने वाले जैसी है? बोलिए, नहीं। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर है? नो। क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? क्या पता चला कि आयत 9-11 में सहाबाए कराम की कुछ सिफात का तذکرہ है? नंबर 1, जल्दबाज नहीं थे, तंगी और मुसीबत में सब्र करते थे, शेखी खोर नहीं थे, अपनी कोताहियों पे गौर व फिक्र करते और इस्लाह करते, ना उम्मीद और ना शुक्रे ना बने। फिर आयत 12 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई का बड़ा ही खूबसूरत अंदाज है कि आप दिल तंग ना करें, काफिरों की तनकीद की परवाह ना करें और अपने काम को जारी रखें। और आयत 17 पे एक रिवायत है, काब बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहते हैं कि मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे खेत का नरम झाड़ हो, सॉफ्ट। हवा इसको झोंके देती है, कभी इसको गिरा देती है, कभी सीधा कर देती है। सिट्टे देखे कभी गंदम के? बस उसको जहन में ले आइए। यहाँ तक कि सूख जाता है। और काफिर की मिसाल ऐसी है जैसे सनोबर का दरख्त जो अपनी जड़ पर सीधा खड़ा रहता है, यानी इरेक्ट होता है। यानी दरख्त सनोबर का बुरा नहीं है, लेकिन काफिर का रवैया बड़ा बुरा है। क्या इसको कोई चीज नहीं झुकाती यहाँ तक कि एक बारगी उखड़ जाता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत 28 है। क्या पता चला, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। असल में यहाँ झूठी अना का तस्करा है जिसकी वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया था। फिर आयत 17 में सहाबाए कराम खुली दलील के गवाह थे। कैसे? अल्लाह की वाहदानियत को दिल से मानने वाले थे, तमाम आसमानी किताबों पर यकीन रखते थे और फिरकाबाजी में नहीं पड़ते थे। अल्लाह हमें उन्हीं जैसा बना दे। फिर आयत 18 के बारे में एक हदीस सही मुस्लिम की 1931। एक शख्स ने इब्ने उमर से कहा, तुमने मोहम्मद सल्लम से सरगोशी के बारे में क्या सुना? यानी अल्लाह ताला जो कयामत के दिन अपने बंदे से सरगोशी करेगा, क्या सुना है? उन्होंने कहा, मैंने आपसे सुना। फरमाते हैं, आप सब इमेजिनेट करें, विजुलाइज करें, मोमिन कयामत के दिन अपने मालिक के पास लाया जाएगा। कौन है मालिक? मालिक ही यौमिद्दीन। यहाँ तक कि मालिक अपना बाजू उस पर रख देगा। कैसे रखेगा हमें नहीं पता। और इससे इसके गुनाहों का इकरार कराएगा और कहेगा कि तू अपने गुनाहों को पहचानता है? वो कहेगा, जी या रब, मैं पहचानता हूँ। परवरदिगार फरमाएगा कि मैंने इन गुनाहों को दुनिया में तुझ पर छुपा दिया था और अब मैं इनको आज के दिन तेरे लिए बख्श देता हूँ। फिर वो नेकियों की किताब दिया जाएगा और काफिर और मुनाफिकों के लिए तो मखलूकात के सामने मुनादी होगी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोला। दुआ करिए अल्लाह ने जैसे दुनिया में हमारे गुनाहों को छुपाया, आखिरत में भी छुपा दे। और आयत 23 से 24 में ईमान, इख्बात और अमल सवाले तीनों को एक ही हकीकत के मुख्तलिफ पहलुओं में पेश किया। ज़रा से इनका फ़र्क नोट कीजिएगा, क्योंकि अख़बतु इला रब्बी, चिंगारियाँ बुझती हैं ना, शोलों का बुझना, उसको इख़बात कहते हैं। असल में ये रुकू आपको मुझे तोड़ रहा है, आज सी लाओ। डोंट बीइंग इग्विस्टिक, अना का शिकारी ना बनो, क्योंकि ये जितने लोगों की कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ने लगी हैं, ये सब अना का शिकार हो गए थे। तो ईमान क्या है? पहली स्टेज, अल्लाह के वजूद और उसकी सिफात पर मुकम्मल यकीन का नाम। इख़बात क्या है? वो कल्बी कैफियत जो अल्लाह को पा लेने, इसकी मार्फत के बाद इंसान के अंदर पैदा होती है। और अमल सवाले क्या है? किसी शऊर और कैफियत से पैदा होने वाली वो कैफियत जो दिन रात नेकियों की सूरत में करते हैं। क्या आपको इस साल दौरे कुरान से इख़बात मिल रहा है? लोग कहते हैं हम टूट गए, लेकिन टूटेंगे ना फिर ही नए बनेंगे। घर है ना, उसको जितना मर्जी रेनोवेट करे मज़ा नहीं आता, कहते सारा गिरा दो फिर नया बनेगा। कुरान आप मुझे पहले डिमोलिश करता है। वो कहते ना कि कुरान हील्स द ब्रोकन हार्ट्स, यानी कुरान सख्त दिलों को तोड़ता है और टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। तो अपने लिए अमल के नुक्ते, सब्र करना है, नेक अमल करने हैं, आखिरी इंजाम से खबरदार करना है, अपने रब से आजजी का इख्तियार करनी है, रब की तरफ से रोशन दलील पे होना है और इताअत करनी है। यहाँ से आगे चंद अंबिया कराम के तस्करे, बल्कि पूरी सूरत अंबिया के किस्सों पे मुहित है। रुकू नंबर 3, 25 से 35, 25 to 35, दावत इलाल्लाह। किस्सों में सबसे पहला किस्सा हजरत नूह का। वलकद अरसलना नूहन इला कौमी, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। इसकी कौम के काफिर सरदारों ने जवाब दिया, हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं। अब आप इसमें से ना नुक्ते नोट कीजिएगा, हजरत नूह पे इल्ज़ाम कितने लग रहे हैं, और तेरे ताबेदारों को भी हम सरसरी नज़र में देखते हैं कि सिवाय अदना और दर्जे वालों और मोटी अकल वालों के और कोई नहीं, यानी सिर्फ गरीब गुरबा ही आते हैं आपके पास। ये टोन, हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बर्तरी अपने ऊपर देख भी नहीं रहे, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। देखिए कहते हैं कि एक मिनट के अंदर क्या क्या सुना गई, ताने, इल्ज़ाम, बातें, और ये वो इल्ज़ाम है जो शाह रोम हिरकल के दरबार में अबू सुफियान से जब सवाल किया था कि बताओ कि मोहम्मद को मानने वाले बड़े लोग हैं या ज़ईफ, तो उन्होंने कहा हैं तो ऐसे ज़ईफ और कमज़ोर। तो उस पर हिरकल ने कहा था कि रसूलों के ताबेदार ऐसे ही लोग होते हैं। ये बुखारी की रिवायत 7 है। तो याद रखिए कि ये अमीरी गरीबी अल्लाह के लिए एक है। ये कुछ लोग जो ज़ाहिर परस्त होते हैं ना, उनके लिए जुमला होता है अमीर के गरीब सब गरीब है। या अय्युन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, सूरत फातिर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे मुकालमा चलता है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम वालों मुझे बताओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे इसने अपने पास से कोई रहमत अता की हो, फिर वो तुम्हारी नजरों में ना आई हो, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले मंड दूं हालांकि तुम इससे बेजार हो। मेरी कौम वालों मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाँ है, और ना मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ। क्या पता चला कि तुम जो कहते हो कहते रहो, मैं इस बात का फिक्र नहीं करता। इन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। मेरी कौम के लोगों अंदाज फील की या कौमी या कौम, जैसे मानी कहती मेरा बच्चा मेरा बच्चा। नबियों की मोहब्बत कम नहीं होती थी कौमों के जुटलाने के बावजूद। अगर मैं मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी नसीहत नहीं पकड़ते? मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं इन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा ही नहीं। इनके दिल में जो है इसे अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में हो जाए। कौम के लोगों ने कहा ए नूह, तुमने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली, अब तो जिस चीज़ से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ। देखिए स्टबन ठिठाई की हद है। अगर तू सच्चों में है, जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहे, और हाँ तुम इसे हराने वाले नहीं हो, तुम्हें मेरी खैरख्वाही कुछ भी नफा ना दे सकेगी। जैसे हजरत नूह के बेटे को बाप की तड़प ना दे सकी। आगे पढ़ेंगे गो मैं कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूँ, बशर्ते कि अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो, वही तुम सब का परवरदिगार है और इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या ये कहते हैं कि इसे खुद इसी ने घड़ लिया है? आप जवाब दीजिए कि अगर मैंने इसे घड़ लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं इन गुनाहों से बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। यानी कौम नूह का तवील किस्सा, यहाँ लिखिए कि हजरत नूह की सीरत है ये पूरी। अभी तरतीब से इनके बेटे के डूबने का मंजर भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें से कुछ अमल के रवैये ले लीजिए। बुरे अंजाम से डराना है लोगों को भी खुद को भी, दर्दनाक अजाब का खौफ खुद भी रखना है और दूसरों को भी देना है। जहालत नहीं बरतनी, रसूलों की पैरवी करने वालों को हकीर नहीं समझना, इंसानों की खैरख्वाही करनी है और सारे कामों पे अजर की उम्मीद अल्लाह से रखनी है। किस्सा कंटिन्यू होता है रुकू नंबर 4, 36 से 49। अल्लाह से डर के रहना टॉपिक है। वो ही अलाउमिन सलाम की तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके इनके सिवा और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं, बस तो इनके कामों पर गमगीन न हो, और एक कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर, और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत ना कर, वो पानी में डुबो दिए जाने वाले हैं। क्या दिल पे गुजरी होगी हजरत नूह के? सारी बिरादरी थी, कौम थी, खानदान था, फैमिली थी, और कहा जा रहा है देखना भी थोड़ी देर में आएगा अजाब। और देखिए अगर अल्लाह ने करे पहले पता चल जाए जल्जला आएगा और उसमें हमारे प्यारे चले जाएंगे, तो कोई खुशी हुई होगी हजरत नूह को यह सुन के? अम्बिया के दिलों पे बड़े कचोके लगते थे जब उनके प्यारों पे अजाब आता था। खैर अजाब का वक्त करीब आ गया। वो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। इनकी कौम के जो सरदार इनके पास से गुजरते वो इनका मजाक उड़ाते। वो कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो इसे रुसवा करेगा और इस पर हमेशगी की सजा उतर आए। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो तन्नूर उबलने लगा। तन्नूर वो जगह थी जहां से सबसे पहले पानी निकला, जैसे चश्मा फूटता है। हमने कहा कि कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी दो जानवर एक नर और एक मादा के सवार करा ले, और अपने घर के लोगों को भी सवाए इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी यानी वही बात जिनका तذکرہ कर दिया गया उनकी बात नहीं होगी, और सब ईमान वालों को भी, और इनके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कितने कम थे पता? 70+, 950 साल। जरब तकसीम करनी आती है? अगर आप हिसाब करें ना तो एन एवरेज हर 12.5 साल के बाद एक बंदा मुसलमान हुआ। आपका मेरा इतना सब्र और हौसला है, हौसला उनका ही होता है जो अल्लाह के लिए करते हैं, उनको क्या लगे एक भी ना सुने। मैं तो सुना रही हूँ ना, मैं तो बच गई। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इस कश्ती में बैठ जाओ, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश वाला बड़े रहम वाला है। वो कश्ती नहीं पहाड़ों में जैसी मौजों में लेकर जा रही थी, यानी इतनी बड़ी मौजें थी जैसे पहाड़ों। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो एक किनारे पर खड़ा था पुकार कर कहा, या बुनै अरकब माना, ऐ मेरे प्यारे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न रह। इसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की पनाह में आ जाऊंगा। मादा परस्ती, मटीरियलिस्टिक अप्रोच, जो मुझे पानी से बचा लेगा। अल्लाह पे नहीं पहाड़ पे भरोसा, खालिक को छोड़ के मखलूक पे भरोसा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई भी नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हुआ। यह है नबी का अकीदा। अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा अतैत वला। बेटे और बाप के अकीदे में जमीन आसमान का फर्क हो गया। इसी वक्त इन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में हो गया। फरमा दिया गया कि ऐ जमीन अपने पानी को निगल जा और ऐ आसमान बस कर थम जा। इसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा लगी और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत हो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा ऐ मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था, यकीनन तेरा वादा भी बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ नूह, यकीनन वो तेरे घराने से नहीं है, इसके काम बिल्कुल ही नाशायस्ता हैं। तुझे हरगिज वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसका तुझे बिल्कुल इल्म ना हो। मुतलक मैं तुझे ये नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में अपना शुमार कराने वालों में ना हो जा। अल्लाह अकबर, यानी तू जाहिलों में अपना शुमार कराने से बास रहे। अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पालनहार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं खसारा पाने वालों में हो जाऊंगा। फरमा दिया गया कि नूह, हमारी जानिब से सलामती और इन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर हैं और तेरे साथ की बहुत सी जमातों पर, और बहुत सी वो उम्मतें होंगी जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे लेकिन फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ये खबरें गैब की खबरों में से हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ करते हैं। इन्हें इससे पहले आप जानते थे और ना आपकी कौम के लोग, यानी नबी सल्लम, इसलिए कि आप सब्र करते रहिए। यकीन मानिए कि इंजाम कार परहेजगारों के लिए है। तो ये था किस्सा नूह, दर्द से भरा हुआ। इसमें एक तो हमने दुआ देखी आयत 41 में, ये सवारी की दुआ है यानी पानी के सफ़र की। जो खुशकी की सफ़र की दुआ है वो सूरह ज़ुख़रुफ़ में आएगी इंशाल्लाह। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाही मजरेहा, इसको री नहीं कहते, रे रे वाहिद मुकाम है कुरान का, मजरेहा व मुरसाहा। क्या पता चला कि ये कश्ती अल्लाह के नाम पे चलती है और ठहरती है? यहाँ से पता चलता है कि ये बिस्मिल्लाह कितना पुराना है और आज भी बिस्मिल्लाह के साथ नाम पढ़ने से बरकत है, वो चीज़ ज़ाया होने से बचती है। अगली चीज जो बड़ी ही रकीक है वो 43 से ऑनवर्ड, हजरत नूह को अपने बेटे का गम मिला। आज हमारा माल और हमारी औलादों का माल हमारा बहुत बड़ा गम है। हाय बेचारे की नौकरी नहीं, हाय उसका अपना घर नहीं, हाय बेचारा इतना सा हो गया। हजरत नूह को तो औलाद का गम कुफर पे जाने पे मिल गया। आप देखिए कि इंसान के ईमान के मुताबिक आजमाइश आती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने बेटा डूब गया। अभी आपने सुना बेटा कहीं और भी तो डूब सकता था ना, इधर क्यों डूबा? गम गम, औलादों के गमों से कई कफारे होते हैं, याद रखिएगा। अपने बच्चों की हिदायत की दुआ कीजिए और ख़ास तौर पे औलाद को वो दुआ दीजिए जो अल्लाह के नबी ने हज़रत इब्ने अब्बास को दी थी, जो आपके बच्चों की तरह थे। اور یہ دعا مسند احمد میں 2397 پہ آپ کو مل جائے گی. اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے کتاب کی تاویل اور تفسیر سکھا. اسی لیے آپ کو تھا کہ حضرت ابن عباس کا لقب مفسر قرآن کا. آپ نے کہا جس نے قرآن سیکھنا ہے وہ ان سے سیکھے. پھر آیت 49 یعنی پوری اگر آپ دیکھیں نا 26 سے 49 تک, تو اس میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. کتنا طویل قصہ ہم نے پڑھا ہے. کیا میری عمر حضرت نوح جیسی انتھک کوششوں میں گزری؟ کیا لوگوں کی تنقید کے بدلے میرا رویہ نرمی والا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کی اللہ سے سرکشی پہ میرا دل کٹتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کا درد اگر آپ کو مجھے مل جائے تو ہماری زندگی کا رخ بدل جائے. کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم جیسا ہو تو کہتے ہیں اللہ جی اتنے اچھے کام کرتی ہوں پھر بھی میرا بیٹا ڈوب گیا. آج ذرا سب نیکی کا کام کریں تو ہمیں لگتا ہے اب ہمارے سارے کام بن جائیں گے. کبھی کبھی بگڑ بھی جاتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس قصے کے ذریعے یہ یقین دلا دیا ہے کہ نوح جیسا نیک شخص بھی بری صحبت کا اثر ہونے کی وجہ سے اپنی اولاد کو بچا نہیں سکا. تو جو بات میں آپ سب کو اپنے سمیت کہوں گی, اپنی اولادوں کی کمپنی پہ نظر رکھیے. یہ وہ کمپنی نہیں جو کاروبار میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور کروڑوں روپے کما رہے ہیں, اس کی بھی اللہ حفاظت کرے, لیکن دوستی کہاں اٹھتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کن کے ساتھ ان کا اٹھنا ہے, کن کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہے. کیونکہ یہ پوری صورتیں آپ کو مجھے یہی بتا رہے ہیں. اور یہ ایک وجہ تھی اللہ کے نبی کے بال سفید ہونے کی کہ اللہ نوح اپنی نسل کو نہیں بچا سکے, اپنی قوم کو نہیں بچا سکے, میرا کیا بنے گا؟ کیسے آئے 26 سے لے کر آپ اتنے 49 تک ایک نبی کا قصہ پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر فکر کر رہے ہیں؟ تو آپ کو مجھے آج کے اس دور میں ان سارے فتنوں, ان سارے چیلنجز کو سامنے رکھنا ہے کہ جو اس وقت امت مسلمہ کی نسلوں پہ ہے. اگر نوح کا بیٹا پانی میں ڈوبا تو ہماری نسلیں بے حیائی کے سمندر میں نہ ڈوب جائیں. آج چاروں طرف یہ پانی پھیلا ہوا ہے جس میں خرابی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیٹا کہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, تو آج بھی کچھ بچے میٹیریلسٹک اپروچ کے ہو گئے. آپ نے بچوں کو مادہ پرست نہ بنائیے, واللہ برانڈیڈ کپڑے پہنانا, برانڈیڈ کھلونے لے کے دینا, ہر روز کچھ دینا, کہیں باہر گئے تو لے کر آنا, بچے خراب ہو جائیں گے. ان کو ہم نے بہت ہی بگاڑ دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ منتیں کر کے تجھے بگاڑ دیا. پیدا تو بڑے اچھے ہوئے تھے لیکن بگاڑا ہم نے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری آنے والی نسلیں جو بچوں کے بچوں کی صورت میں ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر دے. حضرت نوح پہلے نبی ہیں جن کی ہم نے کہانی پڑھی. آگے باقیوں میں بھی یہ ریپیٹیشن ہے. اصل بات یہ ہے کہ باطل کتنا ہی کیوں نہ ہو, تھوڑے سے ہی لوگ حق پہ کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. اور اس دعا کے ساتھ ہم رضا الہی کے پوائنٹ نوٹ کریں گے کہ اللہ ہمیں آج کے دور کے وہ 60-70 لوگ بنا لیں جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں والی کشتی میں رکھنا. سیکھنے کی بات, ظلم نہیں کرنا, دین کے شاعر کا مذاق نہیں اڑانا, غریب لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا, ایمان لانا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا ہے اور صبر کرنا ہے اور جاہلوں میں نہیں ہونا. اور جو قوم حضرت نوح کے ساتھ باتیں کی تھی ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اپنی اور اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.